نحمده ونصلي على رسوله الكريم المعلم. قال الله تعالى في قرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه يلقى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه أصحابه وبارك وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى شرط فرماتے ہیں: اللہ الغنی وانتم الفقراء. میری ذات جو ہے واحد غنی ہے، انتم الفقراء، ہم سارے جتنے بھی تم ہو وہ محتاج ہو، فقیر ہو، مانگتے ہو، صرف میری ذات ہے جو غنی ہے، واحد. لیکن اللہ آپ فرماتے ہیں کہ انتم فقراء، تمام فقیر ہیں. یہ بادشاہ کیسے فقیر ہوئے؟ ان کے پاس تو سلطنتیں ہیں، دولتیں ہیں، حکومتیں ہیں. امیر لوگ کیسے فقیر ہوئے؟ یہ تو بہت پیسے رکھتے ہیں، مالک ہیں، مکان ہیں، محلات ہیں، دکانیں ہیں. یہ بڑے بڑے تاجر جو ہیں، یہ کیسے فقیر ہوئے؟ ان کی بھی تو بہت بہت بینک بیلنس ہیں، سب کچھ ہے. فقیر تو یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو جو محتاج ہو. لیکن یہ تو سارے امیر ہیں، اور آپ فرماتے ہیں وانت الفقراء، سارے کے سارے تو فقیر ہو، بالکل فقیر ہیں. یہ بادشاہت، یہ مال، یہ دولت، یہ تجارتیں، یہ سب کچھ جو ہیں عطائی ہیں، اللہ نے دی ہوئی ہیں، یہ اپنی تو نہیں ہے. عطائی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے جو بادشاہ کوئی ہو اور تھوڑی دیر کے لیے کسی کو اپنے تخت بٹھا دے تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے گا. بادشاہ تو نہیں ہوا، بادشاہ حقیقت تو وہی بادشاہ ہے جو سلطنت کا مالک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی عہدے ہو سب کچھ جو دیے ہیں لوگوں کو، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. جب چاہے وہ لے لے اور جب چاہے اس کو دے دے، جس کو چاہے دے دے، جسے چاہے لے لے. تو وہ اپنا تو نہ ہوا، اس لیے فقیر ہیں سارے، کسی کوئی اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں کہہ سکتا اس کو. سیکنڈ میں اللہ پاک سب ختم فرما دے. قرآن حکیم کے اندر واقعی بھی اللہ پاک نے پیش فرمایا اس کا کہ دو شخص تھے جن کے باغ تھے انگوروں کے، پڑھتے ہیں سورہ کہف کے اندر، دونوں کو اللہ پاک کہتے ہیں میں نے انگور کے باغ لگائے، انگور دیے، نہریں بہتی تھیں باغوں میں. تو ایک آدمی نے اس نے کہہ دیا کہ یہ سب میرا ہے اور یہ تو ہمیشہ قائم رہے گا، میرا باغ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ختم ہو جائے، میں تو قیامت میں بھی کیا یقین کروں گی، تو بھائی پتہ نہیں ہو بھی یہ نہیں، لیکن باغ تو میرا چلے گا، سب کچھ مالک ہوں میں تو اس کا. تو پھر جب آیا تو پتہ چلا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، نام و نشان مٹ گیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالی جو درجات انسان کو عطا فرماتے ہیں، تفاوت جو موجود ہے، ڈفرینس جو موجود ہے انسانوں کے اندر، درجات میں، دولت میں، عقل میں، مال میں، حسن میں، طاقت میں، فرق ہے نا انسان کے اندر. کوئی بہت امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی میڈیم ہے، کوئی کسی چیز میں ہے، کوئی کسی چیز میں بلند ہے، کوئی کسی چیز میں اونچا ہے، کوئی نیچا ہے. تو یہ حقیقت جو ہے یہ अल्लाह ताला की हिकमत पर मबनी है सारी चीज़ें, याद रखें। अल्लाह ताला की हिकमत पर मबनी है, किसी को अमीर कर दिया, किसी को गरीब कर दिया, किसी को बड़ा ऊंचा बना दिया, किसी को नीचा बना दिया, किसी को किसी फील्ड के अंदर रुतबा दे दिया, किसी फील्ड में समझ दे दी, तो ये सारी चीज़ें हैं अल्लाह ताला की हिकमत पर मबनी है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है। हिकमत अल्लाह ताला ने यही हिकमत बयान फरमाई कि जब इंसान उसको खुद समझने लगता है कि मैं इसका मालिक हूँ, मेरा सब कुछ है, मैं ये चीज़ रखता हूँ, मेरे पास ये है, और उसको अपनी मलकियत समझने लगता है, यही अल्लाह ताला की आजमाइश होती है। ये जो अल्लाह ताला ने तबाफत रखा है दराजात में, इतना इंसान सोच ले कि ये अल्लाह की हिकमत पर मबनी है और ये अल्लाह के टेस्ट हैं इसमें। कोई अगर बादशाह है, बादशाह है ठीक है, लेकिन अगर वो बादशाह अपने आप को वाकई बादशाह समझने लगे, अल्लाह कहते हैं वल्लाहुल गनी, असल तो गनी मैं हूँ, बादशाह तो किसी के नहीं है, असल तो मालिक मैं हूँ, कोई किसी का नहीं, मैं अपनी दुकान को अपनी समझने लगूँ, अपनी गाड़ी को अपनी समझने लगूँ, तो ये अल्लाह ताला की हिकमत में मबनी है कि जो इंसान ऐसा नहीं समझता वो इस इम्तहान में पास हो जाता है, और जो इसको अपना समझने लगता है तो वो फिरौन बन जाता है, फिरौनीत आती है उसमें, फिरौनीत का आसार नजर आने शुरू हो जाते हैं, ये मेरी गद्दी है, ये मेरा मुसल्ला है, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ, मैं ये, जब ये शुरू होता है ना आदमी का, अल्लाह ताला इसी को आजमाते हैं कि इंसान ये कितने पानी में जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह ताला ने शायद फरमाया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही पाए दर्जे के इंसान गुजरे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी नसीहतें की हैं छोटे छोटे पढ़ाई के अंदर इंसानों को, इसी आयत पर बड़ी अच्छी नसीहत उन्होंने फरमाई है। एक वाकया बयान फरमाते हैं, बहुत अमीर आदमी था एक, और महल्लात थे उसकी, कोठी थी, मकान थे, दुकान थे, सब कुछ माशाल्लाह ठीक ठाक था। अल्लाह देता है, उस किसी को देता है किसी को, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ की तो तवाफत है ना, फकीर कमतर दर्जे वाला अपने आप रोए कि मैं कमतर हूँ, समझे अल्लाह ताला का इसमें हिकमत है, मेरे लिए ये चीज़ बेहतर है, उसी को बहुत कुछ समझे तो सबसे बड़ा बादशाह बन जाता है, सबसे बड़ा बादशाह बन जाता है। और जो बादशाह है वो समझेंगे मेरा नहीं है भाई, वो वैसे ट्रीट कर अपनी ज़िंदगी के साथ के गरीबों की जाने में ये गरीब हैं, तो अल्लाह पाक उसको फिर पक्की सनत देता है। यहाँ एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही, क्योंकि एक बहुत बड़े इंसान गुजरे हैं, देखो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उम्र सानी कहा जाता है इनको, उनकी सल्तनत तो लाजवाब थी, जानते खिलाफत राशिदा के बाद उनकी सल्तनत को देखा जाता है, लोग कहते हैं इसी में शुमार को, इतने बड़े आदमी थे वो, सही ठीक ठाक वो बड़े रंगीन आदमी थे बहुत, और जिस वक्त सल्तनत मिली तो उनसे बड़ा फ़कीर कोई नहीं था। इसको कहते हैं कि हकीकत में अपने आप को बादशाह ना समझना, सल्तनत में सल्तनत मिल गई तो फिर फटा वाला लिबास होता था, घर के अंदर रोटी नहीं होती थी, बीवी बिल्कुल पैदल कुछ भी नहीं खाने, कपड़े भी पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, पैमंद का कपड़ा पहनते थे, और जब बादशाह नहीं थे तो उनकी राख को पहचान नहीं सकता था, क्या शान के कपड़े पहनते थे, किस रंग से निकलते थे, क्या मशहूर था कि उमर बिन अब्दुज़ीज़ जैसे इंसान कोई नहीं है, इतनी टाट पाट से निकलते थे। तो जिसने इंतकाल किया तो उनके बाद जो उनका बाद में आया आदमी, उसका नाम यज़ीद बिन मालिक था, उनके बाद तो उनको नसीहत की उन्होंने कि भाई बादशाहत किसकी है, अल्लाह की, याद रखना ये तो हिकमत पर दिए है तुम्हें, ये नसीहत पास सुन लें, हम भी ना किसी किसी दर्जे पर तो होंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, या नहीं, एक मकान तो होगा ना छोटा सा, उसी मकान पे इंसान फोकस करता है, एक रेड़ी वाला रेड़ी पे फोकस करने लगता है, लेकिन कहीं भी इंसान ये ना समझे ये मेरी चीज़ है, बड़े से बड़ा इलम आ जाए, बड़ी से बड़ी चीज़ आ जाए, बड़े से बड़ा रुतबा आ जाए, दुनिया बहुत तारीफ करे, नहीं अल्लाह गनी, अल्लाह गनी है। ये दिल की कैफियत पैदा करने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है, इसी का नाम तस्किया है। मैं कह तो रहा हूं लेकिन होनी चाहिए ऐसी बात, अगर ऐसी बात हो जाए तो अल्लाह का मकबूल बंदा बन जाता है, होनी चीज़ नहीं, ये इसी अंदाज से मैं कह रहा हूं, ये तस्किए की मजलिस है, मैं कहानी नहीं सुना रहा आपको, और ना मुझे शौक है कहानी सुनाने का, मैं इसलिए कह रहा हूं अपने आप वजूद को देखें, किसी ना किसी दर्जे पर बैठे, हर आदमी अपने घर का बादशाह है, हमारी सल्तनत है, हमारे चार बेटे हो जाए तो फख्र करने लगते हैं, ये मेरा फलां बेटा है, ये मेरा डॉक्टर है, ये मेरा उधर है, ये मेरा उधर है, मेरे वहाँ पाकिस्तान इतनी मकान है, इंडिया में मेरा ये है। कल जब आया तो उसका पता नहीं था, आज लाने या रूज दे दिया तो अब ये स्टोरी बन गई उसकी। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह गनी हूँ, अब जाता है मैं गनी मैं ही हूँ। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ख़ासतौर पर जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ पर बड़ी ऐसी बातें चलती हैं जिनमें कुछ नहीं था जब हम आए थे, और आज वो अपने से कमतर इंसानों को पहचानते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। अगर उन्होंने अपनी मेहनत से नहीं, वो समझते हम अपनी मेहनत से लिए, मेहनत सबको करना आती है, दो हाथ मेरे भी हैं, इनके भी हैं, इनके सबके दो हाथ हैं, अकल हमारे पास भी है, पैसा हम ही मोहब्बत रखते हैं, हम भी 8 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह वही हिकमत, अल्लाह कहता है कि ये तवाफुत रखना चाहता हूँ मैं कि कौन किस दर्जे पर अमीर बनता है, कौन किस तरह मेरा बनता है, कभी ना समझे कि मेरी चीज़ है। तो ये वाकई आपको सुन रहा हूँ शेख सादी, अब समझ गए ना बात, ये कहानी नहीं है, गौर से सुने इस बात को। और ये नहीं भाई बादशाह होता है वो करता है, नहीं नहीं नहीं, हर आदमी अपने घर में इसी काम करता है, 4 पैसे आ गए तो रिश्तेदारों को पूछना छोड़ देता है, मिलना बंद कर देता है, मिलता है तो करते सबसे पहले कहता है यार देखो हमारे बेटे ने ये गाड़ी ली है यार, ये मकान लिए है, फलां ये है, ये हम ले रहे हैं, बस ये फलां हो रहा है। और दूसरा आदमी का बेचारा कुछ होता नहीं है, अल्लाह ने उसको उसमें रखा है, तो उसको भी बिल्कुल एहसास की कमतरी नहीं करनी चाहिए, अगर वो भी इंसान है वो भी अपने दिल को बड़ा करे, ओके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बड़ी आजमाइश से बचाएगा, ये तो सबसे बड़ी आजमाइश है मेरे लिए, पता तो आखिरत में चलेगा ना, फिर तो ये तो आजमाइश है। तो कहते हैं बहुत बड़ा अमीर कबीर इंसान था, बड़ी इसकी दुकान शेख सादी सुना रहे किस्सा। तो हुआ ये कि उसने शादी वादी हुई उसकी, कोई अब्बा महल के अंदर बैठा है, अपने नौकर चाकर फिर रहे हैं जनाब अलावा, और शाम के खाने का टाइम है, बहुत गरज चमक से बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ है कोई बाहर, इससे मौसम बदल जाता है, हवाएं चल रही हैं बाहर, और खुशहाश में मस्ती में बैठे हैं, बातें हो रही हैं, गपशप चल रही है, नई बीवी है, हिसाब किताब हो रहा है। तो किसी फकीर ने सजा दे दी, ये होता है याद रखना, किसी फकीर ने बाहर से सजा दी, भाई मैं भूखा हूँ अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ दे दो। किसका वास्ता दिया? अल्लाह का दिया, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ दो, मैंने बहुत उसे खाना नहीं खाया, जवाब नहीं है, फिर बैल दी कि अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाना दो, मैं बहुत गरीब हूँ। बस उसे बड़ा गुस्सा आया कि क्यों जरूरत क्या हुई इसकी कि इस वक्त आके हमें डिस्टर्ब किया, इस वक्त हम तखली में थे, अपनी बीवी के साथ बैठे खाना के तनाव कर रहे, तो ये तो बड़ा गुस्से में गया। अब वो समझा कि माशाल्लाह आपको खाना आएगा, बड़े घर पर मैंने दस्तक की, महल पे दरख्त दिया तो बहती तनाव बेहतरीन खाना आएगा मेरे पास, माशाल्लाह पता नहीं क्या आएगा। दरवाज़ा खोला, रख के थप्पड़ मारा, फिर लात मारी, फिर तमाचे मारे, फिर बाढ़ से पकड़ा, पकड़ के फिर दरवाज़े में मारा, कहता बदतमीज शर्म नहीं आते तू, इस वक्त आ गए तंग करने के लिए, हमें यही घर तुझे मिला था, जा किसी और तरफ जा कर बात कर। ये मैंने अपनी आँखों से बहुत से ऐसे वाक़ात देखे अपने मुल्कों के अंदर, कभी जा कर देखें, वल्लाह ये मिजाज है हमारे लोगों का, नौकरों को, नौकरानियों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप भी जानते होंगे अपने माशरे की बातें। इत्तकुल्लाह, अल्लाह का खौफ नहीं है हमारे दिल में, अल्लाह की लाठी जो है बड़ी बेआवाज़ है, याद रखें बहुत बेआवाज़ है, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं, जुल्म पसंद नहीं है, माफ़ी करें अल्लाह पाक किसी को जालिम बनाए, कभी इंसान इतना कभी इतना बोलना बोले बस मैं हूँ मजबूत हूँ। यहाँ देखें तारीख ने वाकई जिसने कहा ना गद्दी मेरी है, तो उनके थोड़े दिनों के बाद ही वल्लाह गनी वंत फकरा, उनकी गर्दनों के अंदर जंजीर पड़ी हुई थी और मर रहे थे वो लोग। ये तो होता है ऐसा, मानो मूर के चला गया, दरवाज़ा ज़ोर से मारा उसने, तो फिर चोटें लगी फकीर को, भूख से 3 दिन मर रहा था, तो उसने एकदम आसमान की तरफ देखा, उसने अल्लाह ताला मैं तेरे बंदे के दरवाजे पर गया था, तेरे बंदे के दरवाजे पर गया था, लेकिन अब मैं बंदा नवाज के दरवाजे पर सदा मारता हूँ, पहले बंदा था ना अब क्या है, बंदा नवाज है जिस पर सदा मारता हूँ, 3 दिन का भूखा हूँ तो मेरे हालात से वाकिफ है, मेरे घर से वाकिफ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने तो इस दरवाजे पर सदा दी थी इसलिए कि यहाँ से मुझे कुछ रोटी मिलेगी, मुझे तो थप्पड़ मिले, लातें मिली, या अल्लाह मैं राजी हूँ तेरे से जो कुछ भी है। बस अल्लाह की रहमत की जलाल में आएंगे शेख सादी करते हैं, वक्त गुजर गया, हालात पलटे, और इतनी उस पर बेचारे पे वक्त पड़ा, बेचारे ही कहूँगा मुसीबत ज़्यादा बन गया, हालात बिगड़े। वो सोने के जो जवाहरात के जो उसकी चीज़ें थी वो बिकना शुरू हो गई आस्ता आस्ता, दुकान फाल हो गई। जब इस गिरते हैं ना जवाल, ये भी मैंने देखे इसी मुल्क के अंदर देखे, बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस, बड़ा कुछ, खुदा की किस्म आँखों से 10 साल के मैं किस्से देखे ना बता, वही सड़कों फिर के भाई आपस में लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है ना वो तकसीम हो गई, और कोई किधर यानी रेजी की तरह बिखर गए लोग। तो एक हुआ क्या बेचारी औरत कहने की, भाई तू तो ना तेरे घर खाना है ना कुछ है, मुझे तो छुट्टी दे, मैं तो जाऊँ अपने मैं के मेरी तो जान छोड़। हत्ता कि जब ऐसा वक्त पड़ता है ना कोई नहीं होता फिर साथ, वो खाने पीने वाले लोग होते हैं जब उसको साथ होते हैं, फिर कौन पूछता भाई, रिश्तेदार नहीं पूछते, बता रहा ना आपको, बड़े नहीं पूछते, बड़े हमारे देखा करते यार उसकी बेटी की शादी दो यार हमें नहीं बुलाया, वो बेचारे कह रहे हैं मेरे यार मामे चाचे के पुत्र था ये, हमारे जो दादा थे जब हमारे यहाँ शादी होती थी तो हम इसको इनके बापों को बहुत आराम से बुलाते थे, लेकिन आज यार देखो हमें इन्होंने बुलाया ही नहीं, होता ही नहीं होता, इंतज़ार कर रहे हैं बेचारे कि यार ये इतना बड़ा आदमी है इसके घर शादी हो रही, शायद हमारे घर भी कार्ड आएगा, बच्चे भी इंतज़ार करते हैं चलो खाना भी खाएंगे, इस मुल्क की बात कर रहा हूँ, निश्चित वही पता ही नहीं ना कारना ना पाना, ये हमारे स्टैंडर्ड का आदमी नहीं है, अपने स्टैंडर्ड के लोगों को बुलाना चाहते हैं। तो भाई भाई एक अंधेरी रहा, वो औरत कहने की ठीक है भाई मुझे छुट्टी दो, वो भी गई, कुछ भी नहीं बेचारे के पास, वक्त गुजर गया, टाइम तो गुजर जाता है। अब यह था कि उसने औरत ने शादी कर ली, क्योंकि स्टैंडर्ड हाई था उसने, फिर किसी और अमीर आदमी शादी कर ली, इसी तरह महलात का मालिक था, सब कुछ उसके पास था, उसी तरह हीरे जवाहरात की दुकान है सब कुछ, बड़े आराम से अपने खामिन के साथ इसी तरह बैठी आराम से, जैसे उसका स्टैंडर्ड था, और खामिन कर लिया उसने, औरत के लिए क्या कमी होती है, इधर से निकल उधर कर लेगी। अंधेरी रात आई, फिर एक तूफान की रात थी, फिर वो बादल गरज रहे थे, फिर वो बारिश हो रही थी, वही अपने खामिन के साथ बैठी थी, एकदम दरवाजे फिर सदा आई और कुंडी खड़की, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ रोटी दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत परेशान हूँ, अल्लाह के वास्ते रोटी दे दो। तो आदमी जो खाने बिल्कुल खाने वाले थे, तो उसने कहा भाई, आदमी ने कहा अपनी बीवी से कि इस तरह कर, पता नहीं बेचारे हम इसको खाना देंगे, इसके लिए तो पूरा हो जाएगा, इसको पैक कर दो सारा खाना, कोई बात नहीं हम अपना थोड़ा सा गुजारा कर लेते हैं, जितना भी खाना बनाए ना सारा इसको दे दो, कहे तू घर भी ले जा, अपने बच्चों को भी खिलाना, तू भी खाना, कहते तू ही जा, मैं तो क्या जाऊँ, अपनी बीवी से कहते तू दिया। तो बीवी सोच रही थी कुछ, उसको पता नहीं समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक हादसा हो चुका था ना उसके साथ, तो उसने कहा नहीं आप ही जाए, उसने कहा नहीं तू चली जा, दिया क्यों बुलाती है। वो दरवाजे तक गई, उसने कुंडी खोली और जैसे देखा तो रोना शुरू कर दिया, उसने धाड़े मार के रोने की, तो उसने क्या हो गया, रोते रोते वापिस आ गई, फकीर से डर गई है, उसके गुरबत से डरी है, क्या वजह, क्या हुआ क्या तुझे, कहते नहीं किसी चीज़ से नहीं डरी, मैं अल्लाह के जलाल से डरी हूँ इस वक्त, कि अल्लाह कितना बेनियाज है, अल्लाह गई तुम फकरा हो। कहते बात यह है कि जो आदमी आया था ये मेरा पहला खामिद है, और एक रात ऐसी थी कि जितनी भी तो बिल्डिंग हीरे जवाहरात देख रहे हैं ना, इससे बड़ा उसका बिजनेस था, और हम इसी तरह खाना खा रहे थे, एक फ़कीर आया था, उस फ़कीर ने उससे ऐसी रोटी मांगी थी, तो उसने उसका बहुत नाज़ेबा हसर किया था, तो वो भी रोने लगा, उससे ज़्यादा रोने लगा, तू क्यों रोता है, कहता फोर हम सब फ़कीर हैं, कहता उसे पहचानगी तो मुझे नहीं पहचानी, मुझे नहीं पहचानी, खामिद को पहचाना है, वो फ़कीर मैं था जिसको तेरे खामिद जिसको धक्के दिए। अरे भाई ये अजीब चीज़ है, देखिए अल्लाह वाले हर चीज़ का अल्लाह, ना किसी पे इंसान इतराए ना कुछ सोचे, बस एक चीज़ अल्लाह का है, कि किसी चीज़ को अपना समझे ही ना इंसान, सब उसी का है, गुरबत देने भी वाले अमीर देने वाले भी वो एक स्टेटस पर अल्लाह के शुक्र पे रहे इंसान हर हालत के अंदर, लेकिन इसको समझने के लिए इस तक पहुँचने के लिए एक अच्छे दिल की ज़रूरत है दोस्तों। ये है ऐसी इबादत हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह के नज़दीक बड़ी मकबूल हैं, और ये रोज़ हमारे माशरे में होती हैं, हमारे घरों में होती हैं, हमारे रिश्तेदारों में होती हैं। याद रखो कितने ही हम तजूरी पे ताले लगा के रखें, लेकिन कौन है, अल्लाह रुगनी अंतर फ़कीर, हम तो हमेशा मोहताज हैं उसके, कितने ताले लगा दें اپنی تجوری پر کسی پہ وہ آپ کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کی دیوی اس کی ہے, وہ لے بھی سکتا ہے کسی وقت. اسی طرح اسی کو مالک سمجھیں, اسی کا سب کچھ سمجھیں. بس بندگی اسی چیز کا نام ہے دوستو. اپنے دل کو اچھا بنائیں, اچھے انسان بنیں. جو اللہ نے رتبہ دیا ہے, جو چیز ہمیں دی اللہ پاک نے جس مقام پہ بھی, اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. جو اس کا حق ہے اس کو ادا کریں. اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کو اسی طرح خرچ کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ یہ تیری چیز دی گئی ہے, میں تو اتنا کھاتا ہوں, باقی تیرے راستے میں اس کو خرچ کر دیتا ہوں. اللہ ہی ایسے انسانوں کو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا. جو لیتے ہیں اور جو دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اس لیے دے رہا ہے, اس میں اللہ کی حکمت ہے. دینے کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ میرے درجات کو بلند کرنا چاہتے, اس لیے کہ میں اس کو دے کے دیتا ہوں کہ جیب میں ڈالتا ہے یا آگے کسی کو دے دیتا ہے. آپ دیکھیں دینے کے بعد کبھی کمی نہیں ہوگی. دریا بہتا ہے نا, دریا بہتا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے, آپ اسے جتنا پانی نکال لیں اس کی سطح ویسی چلتی رہتی ہے. کم ہوتا ہے کبھی دریا؟ کبھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ دے رہا ہے. دریا لے نہیں رہا, کیا کر رہا ہے؟ دے رہا ہے. دینے والا جو ہے وہ کبھی کم ہوتے ہی نہیں. ساری دنیا اگر اس دریا پہ آ گئی پانی پیتے رہے, آپ نے دیکھو کوئی ندی بہتی ہوگی نا آپ کی, ساری دنیا ڈنگر جانور انسان سب پی رہے, اس کی سطح وہیں جا رہی ہے. بلکہ کبھی کبھی الحمدللہ جب اللہ کی جوش رحمت آتی ہے تو وہ خشک ہونے کے بجائے اتنا دے دیتا ہے کہ وہ بستے ہوئے چلا جاتا ہے پانی اس کا. اتنی اللہ دولت دے دیتا ہے, اس سے سنبھلتا نہیں پھر انسان سے. وہ انسان کبھی غریبی نہیں ہوتا جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ وہ ثواب دینا چاہتا ہے لے کے دینے پر. کیونکہ وہ جو ساری دعائیں مجھے پڑیں گی جب انسان مجھے دے گا, جب میں انسان کو دوں گا تو میرے لیے رحمت بن جائے گا. لیکن جس نے تالا لگا لیا, زکوٰۃ تو ہے ہی جو کچھ ہے وہ دینی ہی دینا ہے ہمیں, ہر حالت میں دینی ہے زکوٰۃ تو دینی ہے, وہ بھی مشکل سے نکلتی ہے. اس میں یہ ٹیکسی اور ہیرا پھیری کرتے ہیں, جی نہیں اتنا ہم نے دینا تھا, اس کا قرضہ بھی دینا ہے. اتنا ہیرا پھیری زکوٰۃ پہ کرتے دیکھا ہے, اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جتنی زکوٰۃ نہیں ہوتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اس کو بھی زکوٰۃ میں ملا دو یار, کتنا فرق ہے. اور خدا کی قسم ان کی زکوٰۃ سال بھر بڑھتی ہے, اگلے سال 10,000 بڑھ کے سہ رہا ہے میرا حساب کیسے بڑھا ہے. اور لطف آتا ہے اس کو دینے میں, لطف آتا ہے خرچ کرنے میں پیسے میں, ایک عجیب ٹیسٹ اس کو محسوس ہوتا ہے. وہ کبھی غریب نہیں ہوتا, کبھی غریب نہیں ہوتا. سب سے زیادہ ہم خرچ جو کرتے ہیں جا کے حج پہ ہوتا ہے نا خرچ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جتنا تائے تو خرچ کرا, لیکن جب تو واپس آئے گا تو اس سے زیادہ لے کر آئے گا. وہی تجربوں کی باتیں آپ نوٹ کر لیں. بعض لوگ تو دبا کے جاتے ہیں نا پیسے کے, یار نہیں یہاں ہمارے پاس خرچ کرنا ہو جائے, ہم فلاں کر کے جا رہے ہیں, جا تو صحیح میرے سفر میں جا رہا ہے, رکنا نہیں, خرچ کرنا. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرنا نہیں, وہ میرا گھر ہے, وہ میرے بندے ہیں, اس گھر کے رکھوالی ہیں, وہاں کے پھرنے والے ہیں. تم تو سردیوں میں موقع ملتا ملتا ہے, وہ تو ہر وقت میرے گھر کو دیکھتے ہیں, ہر وقت سب گنبد خزاں پہ نظریں پڑتی ہیں ان کی, ان کی تو ہر وقت چلتے پھرتے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. وہ تو تم سے کہیں بہتر ہیں, وہ تو اس جگہ کے رہنے والے ہیں. ان کو کنجوسی نہ کرنا, بلکہ انہی کے لیے ہم نے دولت دی ہے کہ یہاں سے کماؤ اور ان کو کھلاؤ. وہاں کنجوسی نہیں کرنا اللہ پاک نے کہا, خبردار. وہیں ہم وہاں پیسے گنتے ہیں کہ یار اتنے خرچ ہو جائیں گے فلاں ہوٹل میں جائیں, نہیں. اللہ کہتا ہے جا کے خرچ کر کے آؤ, پھر دیکھ کے آؤ کہ اس سے زیادہ میں تمہیں عطا فرماؤں گا. یہ سب دل کی بات ہے بھائی, دل جو ہمارے ایسے بند ہوئے ہیں, بالکل بند ہو چکے. کھولو, اس کی چابی لگاؤ, دل پہ چابی لگاؤ. کیا چابی ہے؟ ذکر جو ہم کرتے ہیں. اللہ آپ ذکر کرتے دیکھیں, ذکر پہ چلتے جائیں چلتے جائیں, سب سے پہلے جو چیز کھلے گی نا, دل کھلنا شروع ہوگا. ایسے وہ ایسی لطف آنا شروع ہو جائے گا ہر چیز میں, کہ جس پہ تالے لگے ہوئے تھے, جو رکے ہوئے تھے, جو اللہ تک خرچ کرنے میں مال میں ہر چیز میں روکتے تھے نا, وہ چابی لگتی رہی. اب لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے, ذکر کرتے رہیں گے, دل کے تالے کھلنا شروع ہو جائیں گے آہستہ. افتح قلوبنا بذکر اللہ, قلوبنا قلب, یعنی ایک بات نہیں کی قلوب, یعنی دل کو بھی کھول دے. کفل جو ہے وہ ایک کفل نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, کئی کفل ہیں اس پہ لگے ہوئے دل پہ. ہر تالا کھلتا ہے, کنجوسی کا ہے, غیبت کا ہے, ہزاروں کا تالے ہمارے دل پہ لگے ہیں, کیا پتہ ہمیں. لیکن اب بتاؤ کہ جو آدمی چابی سے کھول لینے مر, اس کی موت کیا ہوگی؟ مجھے بتایا, ہم کیسے مریں گے؟ جب ہم ذکر کریں گے نہیں, تالا لگائیں کھولیں گے نہیں, تو دل تو بند ہے, تالا لگا ہوا ہے, ہم نے ذکر کیا ہی نہیں زندگی بھر, ذکر میں ہم نے اہمیت دی نہیں, ذکر کو ہم نے سوچا ہی کچھ نہیں. وہ کنجی تو ہمارے جیب میں پڑی ہوئی ہے, اور ہم ہیں مر گئے, तो वहां जब फरिश्ते जाएंगे ना इसके तो पूछने लगेंगे सारे दिल के पर से बस सवाल करें क्या, ये क्या जवाब देगी, अल्लाह कौन है, नबी कौन है, रसूल कौन है, इस कुफरी नहीं खोले इसने। सड़ी बात तो जब कुफर खुलते तो अंदर से खजाने निकलते हैं दिलों के, खजाने तो बंद है हमारे अंदर। कसरत से अल्लाह का जिक्र करो दोस्तों, ये जिक्र जो है अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत दी है। वाला जिक्र अल्लाह अकबर फरमाया कि सब चीज की कुंजी यही है, अल्लाह को पाना चाहते हो जिक्र करो, जन्नत तक जाना चाहते हो जिक्र करो, सरकार से मोहब्बत चाहते हो जिक्र करो, हर पुरस्कार से हर चीज गुजरना चाहते हो जिक्र करो, सारे तालों की जो कुंजी अल्लाह पाक ने दी कौन सी चीज है, अल्लाह का जिक्र है। जिक्र करना चाहिए नहीं, हिम्मत करें, दिन चार हैं हमारे जिंदगी में हाथ दिए अल्लाह पाक ने, या मजे में गुजार दें, सो के गुजार दें, या दिलों के तालों को खोल के अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे, आराम से जिंदगी गुजारते और अल्लाह तक पहुंचे। अल्लाह ताक मुझे आपको तौफीक नसीब फरमाए।